السلام علیکم، ایکسپریس نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو، اور میں ہوں احمد قریشی. جو اس وقت ہمارے مغربی جو نیبرہڈ ہے پاکستان کی، جو ہماری ویسٹرن نیبرہڈ ہے، گلف جو ہے یا مڈل ایسٹ، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پاکستان براہ راست متاثر ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے، میں آپ کو بھی بتانے جاؤں گا کہ ہمارا ریئیکشن، جو صحیح ریئیکشن ہے پاکستان میں، جو آفیشیل ریئیکشن ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ میں بات کرتا ہوں. لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سب دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. لیٹسٹ خبر تو یہی ہے کہ آج تھوڑی دیر پہلے جو ہے سعودی حکومت نے ایران کے سفیر کو ریاض میں آرڈر کر دی، حکم دے دیا ہے کہ 24 گھنٹے میں ملک چھوڑ کر واپس چلے جائیں. مطلب ایک طرح سے ایکسپیل کیا ہے، ایرانی سفیر کو کر دیا ہے. اس سے پہلے دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفرا کو جو ہے بلا کے پروٹیسٹ دی اور یہ سب کچھ ہوا. میں آپ کو ابھی دکھانے نہیں جا رہا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میں آپ کو دو تین چیزیں پوائنٹس آپ کو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. نمبر ون، پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب نے 47 سعودی سٹیزنز کو ایگزیکیوٹ کیا کیونکہ ان پہ ثابت ہوا جرم کہ وہ دہشت گرد تھے. 47 تمام کے تمام سعودی شہری ہیں، انہوں نے ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا. میرے خیال میں کسی اور ملک کو نہیں چاہیے کہ اس پہ تبصرہ کرے کیونکہ وہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایران میں اب تک کئی وہاں پہ ایرانی شہری جن کے اوپر مختلف الزامات ہیں، سیڈیشن کے ہیں، سرکشی، بغاوت کے، وہاں پہ جو کہ سنی علماء تھے یا وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ وہ علماء ہیں لیکن وہ تھے ایکچولی علماء نہیں، وہ پولیٹیکل، زیادہ تر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے اور وہ کچھ دوسرے کاموں میں ملوث تھے اور ان کو سزائے موت دی گئی. سعودی عرب میں یا کسی اور عرب ملکوں کے اندر، یہ عرب اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پروٹیسٹ اس طرح نہیں کیا کبھی، ہم نے ایرانی سفارت خانوں پہ دھاوا نہیں بولا، نہ ہم نے اٹیک کیا. تو ایران کو بھی یہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ ایک ملک میں ایک چیز ہو رہی ہے، دوسرے ملک کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ غلط ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو بھی آگے چل کے دکھاؤں گا کہ بڑے معتبر ایرانی دانشور جو ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں یہ جو ہوا ہے کل، کیونکہ یہ بہت غلط کام ہوا ہے. دو بہت بڑے اہم مسلمان ملک ہیں ایران اور سعودی عرب، اور ایک ملک کے اندر جب دوسرے ملک کے سفارت خانے پہ دھاوا بولا جائے اور اس طریقے سے اور معاملے کو سیکٹیرینائز کیا جائے، یہ خطرناک. صرف دو ملک، یہ پھر دو ملکوں کا ایشو نہیں رہتا، یہ سارے مسلمانوں کا ایشو ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر آگ لگے گی اس میں سب جلیں گے، تو یہ آگ کیوں لگائی جا رہی ہے، یہ نہ لگائی جائے، اس کو بند کیا جائے اور ایشوز جو سیاسی ایشوز ہیں وہ سیکٹیرینائز نہیں ہونی چاہیے. تو پہلا پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا، ایک تو یہ ہے کہ ایک مداخلت نہیں ہونی چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ ایران نے بھی سنی ایکٹیوسٹ کو ایگزیکیوٹ کیا. سعودی عرب میں تو انہوں نے دھاوا نہیں ڈالا ایرانی سفارت خانے پہ، نہ کبھی پروٹیسٹ تک کیا، نہ کبھی ایرانی سفیر کو بلایا. تو یہ بات سعودیوں کی وجہ ہے اس پوائنٹ جو ہے کہ ایران کو بھی مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی اس چیز کے اندر، اور ایشو کو سیکٹیرینائز نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ سیکٹیرین نہیں ہے. اور وہ بھی میں آپ کو بھی چیزیں بتانے جا رہا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے اور دوسری پوائنٹ وہ مداخلت کی ہے. اور ایگزیکیوشنز کی جہاں بات آئی تو میرے خیال میں، اور میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ مثال اینڈ میں دوں گا کہ اگر ہمارے جو دوست ہیں تہران میں ایران حکومت کے اندر، اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم 47 جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ان سے ایک جو ہے وہ کیونکہ سعودی شیعہ تھے تو وہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم مداخلت کریں. تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ خود ایران کی حکومت نے ایک بڑے معتبر دانشور، مصنف اور حکیم، اور شیعہ یعنی کہ فقہ جعفریہ کے بہت بڑے مصنف تھے کتابوں کے، ان کے ساتھ خود ایرانی حکومت نے کیا سنی. مطلب آپ اگر اعتراض کر رہے ہیں ان کے اوپر، تو آپ نے اتنے بڑے دانشور جو محترم تھے، شیعہ تھے، اور وہ ان کا احترام سنی حلقوں میں اظہر شریف کے اندر بھی تھا، اور ظاہر ہے شیعہ جو علماء ہیں اور ان کے جو دینی حلقے ہیں ان میں بھی تھا، قم کے اندر اور نجف میں. یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں سب سے پہلے کہ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اینڈ کے اندر کہ یہ ٹیبو جو ہے نا، ہمیں اس موضوع پہ بات کرنی چاہیے، یہ بہت اہم ہے، اور ہمیں پاکستانی ہو کے بات کرنی چاہیے کیونکہ نہ سعودی پاکستانی مسلمان سنیوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، نہ ایران پاکستانی مسلمان شیعوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. یہ ممالک ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کو استعمال کریں گے، ریپرزینٹ آپ کو نہیں کر رہے. آپ کو کوئی ادھر لے جائے گا مروانے کے لیے، کوئی آپ کو ادھر لے جائے گا مروانے کے لیے، خود وہ اپنے ملک میں بیٹھیں گے. تو ریپرزینٹ ہمیں یہ دو نہیں کرتے، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اپنے مفاد دیکھنے. یہ میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ ایگزیکیوشن کس کی ہوئی ہے، بہت اہم چیز ہے. میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے فرسٹ ٹائم دکھانے جا رہا ہوں کہ یہ جو ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں، سب 47 نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک. یہ اس کا نام ہے، یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے فارس الشویل. ये बहुत बड़ा मुनज़्ज़र यानी कि जिसे कहते हैं ना थ्योरी प्रोवाइड करने वाला, डायरेक्शन देने वाला अलकायदा का और दाइश का। पहले अलकायदा का था ये, फिर दाइश का था, जिसे एग्जीक्यूट किया है 47 जो सऊदीया में एग्जीक्यूट हुए हैं। अच्छा, हमारा इंटरेस्ट इस मामले में इसलिए भी है, मेरा कम से कम मैं तो इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूं इस इशू में, इसलिए कि हम भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तमाम बैकग्राउंड से कर रहे हैं। हमने पिछले साल तकरीबन मुझे नहीं पता 500 600 700 लोग एग्जीक्यूट किए हैं और आगे भी होने जा रहे हैं बहुत सारे एग्जीक्यूट, और हर बैकग्राउंड से हैं और ये होने चाहिए। और ये तंकीद जो है हमारे ऊपर भी हुई है, ये हमारा इसमें डायरेक्ट बरह रास्त इंटरेस्ट है। शुएल जो है ये क्या इसमें इल्जाम थे, मैं एक आपको एक सैंपल दे रहा हूं कि ये 47 जो एग्जीक्यूट हुए हैं, ये बड़ा अच्छा काम किया सऊदी हुकूमत ने कि इनको एग्जीक्यूट किया। ये आप इसकी स्क्रीन पर जरा देखें आराम से, इसमें बहुत सारी चीजें, ये कुछ 9 पॉइंट्स है, मैं आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स दिखाता हूं। ये शख्स जो है फारिस शुएल अलकायदा का, ये मुसलमान है, ये सुन्नी है, दाइश का है, तकफीरी है ये। इसने क्या काम किए हैं, ये जो है अलकायदा की जो आइडियोलॉजी है पूरे खलीज के इलाके के अंदर, उसका ये सबसे बड़ा मुनज़्ज़र और मुफक्किर ये शख्स था फारिस शुएल। ये इसने लिटरेचर बनाया है, ये 9 किताबों का मुसन्निफ है, इसने 9 किताबें लिखी। इसने ये ऐलान किया कि सऊदी हुकूमत जो उसका अपना मुल्क है ये मुर्तद है, और इसमें जो मुसलमान रहते हैं सारे सब मुर्तद हैं, यानी वाजिबुल कत्ल है, इनको कत्ल करना जायज है और करना चाहिए। इसने और बाकी और काफी चीजें लिखी गई हैं कि इसको 2004 में पकड़ा था, जब ये पकड़ा गया, हालांकि ये मुफक्किर और मुनज़्ज़र है और किताबें लिखता है और इंटरनेट पे कई फोरम चला रहा था और रिक्रूटमेंट कर रहा था, लेकिन इसके साथ असलहा भी पकड़ा गया और इसको जो है फाइनली अब जाके 2004 में पकड़ा था इसे, अब जाके 12 साल बाद इसे एग्जीक्यूट किया गया। तो एक 47 में से एक ये है, मतलब हमें पता तो चले ना कि एग्जीक्यूट कौन हुए। ये अच्छा किया इन्होंने सऊदियों ने कि इन्होंने ये रिलीज किए इस तरह के इंफोग्राफिक्स जो हैं। दूसरा शख्स वो जिस पे ईरान इतराज कर रहा है, वो कौन है, वो भी सऊदी शहरी है इन्हीं 47 के अंदर से, तो ये भी सऊदी शहरी है, ये इनका नाम है निमर निमर। ये इन्होंने क्या किया है, ये कौन है, ये बेसिकली एक सऊदी शहरी है, 1959 में इनकी पैदाइश हुई, सऊदी अरब में पढ़े, नॉर्मल सऊदी अरब में नॉर्मल इन्होंने वक्त गुजारा। 1980 में जब ईरान में इस्लामिक वो रेवोल्यूशन आई थी और इमाम खुमैनी फ्रांस से तेहरान वापस आ गए थे, तो उन्होंने राबते किए होंगे बहुत से लोगों से ईरान के बाहर भी। आपको पता है उस वक्त ईरान चाह रहा था कि वो रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करे, तो काफी लोगों को उन्होंने लुबनान से इधर से उधर से जो है बुलाए, सऊदीया से इनको भी बुला लिया। 1980 में ये ईरान चले गए, इनको किसी ने नहीं रोका, ये ईरान गए, वहां पर ये पढ़ने गए और इजाजत से गए, वीजा लेके गए, सब कुछ नॉर्मल तरीके से गए, इसमें कोई जुर्म नहीं है, पढ़ने गए वहां पे और पढ़ के वापस आए, फिर भी इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, इनको कुछ नहीं कहा। बाद में ये, और ये चीजें मैं अपनी फेसबुक पेज पे लगा रहा हूं हमारे प्रोग्राम की, ये चीजें आप सारी जो डेटा मैं अभी शेयर कर रहा हूं ये मैं आज रात को लग जाएगा, आपने जरूर देखना है। तो निमर निमर जो है ये वापस आ गए थे 2004 में सऊदीया, इनको पहली दफा 2009 में पकड़ा और रिहा कर दिया, फिर 2006 में पकड़ा, फिर रिहा हो गए, फिर 8 में पकड़ा, फिर रिहा हो गए, फिर 9 में पकड़ा, फिर रिहा हो गए, फाइनली इनको 2012 में पकड़ा। क्यों पकड़ा, ये 3-4 वजहों की वजह से पकड़ा इन्हें। ये एक तो ये था कि इन्होंने खुल के कहा कि जो मशरकी इलाका है सूबा है सऊदी अरब का, इसे जबरन तोड़ दिया, अलग कर देना चाहिए, ये अलग मुल्क बने, जो अलकतीफ का इलाका है मशरकी सऊदी अरब, ये अलग मुल्क बन जाए, तो उन्होंने खुल के वीडियोस बनाई और मुल्क तोड़ने की बात की। फिर दूसरी जो है इन्होंने कहा कि दावत दी लोगों को कि वो असलहा हाथ में पकड़ें और लड़ें, टेररिज्म वायलेंस की बात की। फिर उन्होंने कहा कि आर्म्ड इंसर्जेंसी होनी चाहिए अपनी सऊदी हुकूमत के खिलाफ। आखिर में जब इनको पकड़े गए थे 2012 में तो इनके पास गन थी, इन्होंने रेजिस्ट भी किया, तो इनको 2006, 7, 8, 9 बहुत सारे मौके दिए गए, ये नहीं बाज आए, बिल्कुल फारिस शुएल की तरह जो दाइश और अलकायदा किए हैं, ये भी बाज नहीं आए। और आखिर में इनको जो है 2012 में पकड़ा, 6, 7, 8, 9 पकड़ के छोड़ते रहे, 12 में पकड़ा और 16 के अब शुरू में जो है इनको फांसी दे दी गई। ये मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं कि एक्चुअली ये जो यानी कौन थी जो 47 जो 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 एग्जीक्यूट हुए। अब इसका रिएक्शन मेरे ख्याल में ईरान के लोग, अच्छा पहली बात मैं आपको बताऊं कि मेजॉरिटी दुनिया के अंदर जो मुसलमान हैं, चाहे वो सुन्नी हो चाहे वो शिया हो, उनका कोई गर्ज नहीं है। एक मुल्क ने अपने 47 शहरियों को दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के इल्जाम में एग्जीक्यूट किया है। अच्छा मैं अच्छा इसमें कर दिया उन्होंने, तो बाकी मुसलमान जो है सुन्नी और शिया का क्या इसमें इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो जो अपोजिशन हो रही है इस पर, जो बात हो रही है, जो जो इस पर बात ज्यादा कर रहे हैं, वो बेसिकली कौन कर रहा है, आप अगर सोशल मीडिया पे जाएं तो दाइश और कायदा वाले जो हैं वो इस पे एहतजाज कर रहे हैं और ईरान की हुकूमत कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं कि ना ईरान के अवाम कर रहे हैं ना ईरान के लोग कर रहे हैं इस पे प्रोटेस्ट। कौन कर रहा है इसके अंदर? ईरान की गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी पूरी नहीं कर रही, गवर्नमेंट के अंदर दो इदारे हैं जो कर रहे हैं, वो कौन है? ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगली जो चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने मेरे साथ रहना है। मैं वक्फे की तरफ वक्फा ले रहा हूं एक, और आगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, तो आपने मेरे साथ रहना है। मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। हमारे मगरबी जो नेबरहुड है, जो मिडल ईस्ट है, उसमें बहुत कुछ हो रहा है। एक मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट सेगमेंट में कि बहुत से लोग पाकिस्तान में, उनकी राय ये है कि हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, वहां पे आग लगी हुई है, हम दूर रहें। लेकिन पॉइंट ये है कि ये आग हमारे घर तक पहुंच सकती है, पहुंच रही है ऑलरेडी, और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे पहुंच रही है। तो चुप रहने का भी मकान नहीं है, इसको हम टैबू ना बनाए, इस पर हम बोले और खुल के बोले, और हम इस पर बहुत कुछ कर भी सकते हैं। और क्या करना चाहिए हमें, वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैंने आपको जो जो मटीरियल पहले सेगमेंट में दिखाया था वो हमारी फेसबुक पेज पे आज रात को होगा, वो आपने देखना है। जो अभी मैं दिखाने जा रहा हूं वो भी है। तो मैंने आपको दो पॉइंट्स बताई थी। नंबर वन ये थी कि ये मेरी ओपिनियन है और मेरे ख्याल में ये इसमें कोई हमें वो हर्ज नहीं होना चाहिए। ये खुद दानिश्वर जो ईरानी है, दानिश्वर लोग हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो खुद ये कह रहे हैं कि कम अज कम ये जो रिएक्शन ईरान में कल हुआ, जो एक मुस्लिम मुल्क के अंदर दूसरे मुस्लिम मुल्क के सफारत खाने पर धावा डाला गया, और जिससे इससे सेक्टेरियनिज्म फैलेगा और फैल रहा है, और इससे मुसलमान डिवाइड हो रहे हैं, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। सऊदी अरब का अपना आजादी अंदरूनी मामला है, 47 सिटीजन उनके हैं, दहशतगर्द पाए, दहशतगर्दी मुलव्वस पाए गए थे, उनको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, ये उनका इशू है। ये खुद ईरान के अंदर बहुत सारे सुन्नी ईरानी थे, वो ईरानी शहरी हैं, ईरानी सुन्नी एक्टिविस्ट हैं, वो एग्जीक्यूट हुए हैं। किसी ने सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में इन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं किया या धावा नहीं डाला ईरानी एम्बेसीज पे, ये भी एक पॉइंट है। इस पर हम बात कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बस दिखा दूं कि मैंने आपको बताया, और दो सैंपल्स मैंने आपको दिखाई हैं पीछे से, जिसने नहीं देखी वो ये फेसबुक पे आप जरूर देखिएगा। ये दो मैंने आपको सैंपल्स दिखाई हैं कि ये दो एग्जांपल्स हैं कि कौन है ये निमर जो हैं, और एक फारिस शुवेल दाइश और अलकायदा के दो सैंपल्स हैं उन लोगों की जो जिन्होंने सऊदीया में जिनको एग्जीक्यूट किया गया है। और हमारा इंटरेस्ट इसमें क्या है, वो ये है कि हम भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं दहशतगर्दों को, तमाम दहशतगर्दों को हर बैकग्राउंड से। तो ये एक केस है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए कि इस पर रिएक्शन क्या हो रहा है और हम इसको किस तरह डील कर सकते हैं। क्या हुआ ईरान के अंदर कल? ईरान में जो कल हुआ है वो अनफॉर्चुनेट चीज रही है। मैं आपको दो चीजें दिखाने जा रहा हूं। पहले तो देखिए तेहरान के अंदर जो एम्बेसी में हुआ, सऊदी एम्बेसी में, वो क्या हुआ, ये क्लिप्स देखें जल्दी।
माशाल्लाह
ये जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए हैं ये सोशल मीडिया पे हैं, ये जो ईरान में एक्टिविस्ट है उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्विटर पे लगाए हैं। ये तेहरान में जो सऊदी एम्बेसी है वहां पे हुआ, और यहाँ पे जो हुआ बेसिकली बाकायदा कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वहां पे अंदर घुस के जो है जो सऊदी गवर्नमेंट के जो वो हैं बादशाह हैं और दूसरे जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तस्वीरें निकाल के जलाई गई। बाकायदा जो डिप्लोमेटिक सऊदी एम्बेसी के अंदर जो कागजात थे वो निकाल के इकट्ठे बाहर जमा करके उनको जलाया गया। अगली जो क्लिप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं ये इंटरेस्टिंग है, ये मशहद की है। मशहद में वहां पे सऊदी कौंसुलेट है, क्योंकि बहुत सारे सऊदी शहरी जो हैं वो ज़ियारत करते हैं वहां पे, बहुत अहम जो हैं मज़ारात हैं मशहद में, और दुनिया भर से लोग आते हैं वहां पे, तो वहां पे सऊदी कौंसुलेट भी है। ये क्लिप देखें आप वहां का। ये क्लिप आपने देखा, ये क्लिप मैं आपको एक और दफा दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको ये इस अगली जो बात मैं करने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो ईरान में हुआ है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, उनको काफी लोगों को मौका चाहिए हमारे, क्योंकि सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, और उनको मौका चाहिए सेक्टेरियनिज्म की बात करने और शियाओं के खिलाफ बात करने की। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो रिएक्शन हुआ है, ये कोई शिया रिएक्शन नहीं है, ये ईरानी लोग भी इस चीज में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी ईरानियों की नहीं थी, ये गवर्नमेंट रिएक्शन है, इंजीनियर्ड रिएक्शन है, सियासी रिएक्शन है। और किसने किया ये भी मैं आपको बताता हूं। एक दफा फिर से जरा क्लिप देखिए, मैं आपको चीज दिखा रहा हूं, आप देखिए कि लोग जो सामने से गुजर रहे हैं, जो यंग लड़कियां ईरानी और यंग लड़के गुजरते हुए जा रहे हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। जरा देखें क्लिप फिर से। ये देखा आपने किस तरह जो नौजवान ईरानी हैं वो गुजरते हुए सामने से जा रहे हैं मशहद में, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये किसने किया। ये बेसिकली कुछ इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, हाईलाइट हुई हैं, कुछ फेसेस भी हुए हुए हैं, कुछ ईरानी कर रहे हैं, कुछ ईरान से बाहर लोग कर रहे हैं हाईलाइट। ये बेसिकली ईरान में दो तंजीमें हैं जो बहुत तशद्दुद पसंद है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, एक है बसीज और एक है IRGC या ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। ये दो बड़े एक्सट्रीम है। जो बसीज है बेसिकली यूथ विंग है IRGC की। IRGC जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स है, वो एक बहुत बड़ा मोतबर इदारा है, बहुत बड़ा है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, और उनकी अपनी इंटेलिजेंस है। और ये वो IRGC है जो बेसिकली इन्वॉल्व है शाम में, लिबनान में, इराक में, यमन में, जो ईरान के अंदर भी और ईरान के बाहर भी काम करती है। ये सारी जो प्रोटेस्ट हुई है बेसिकली इन्होंने करवाई है, ये किसी ने कराई, और ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये इवन जो ईरान की हुकूमत है उनसे भी हट के उनके मुखालिफ काम कर जाते हैं, जैसे कि ये भी इन्होंने सऊदी एम्बेसी पे किया। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जवाद जरीफ साहब जो कि ईरानी वजीर खारजा हैं, ये दूसरे लोग हैं, उनका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये बेसिकली इन्होंने अलग से किया है। और बहुत से लोगों को आप में से ये नहीं पता कि ये तो सऊदी एम्बेसी पे हुआ है, इससे पहले जो मशहूर वाकया 1979 का था, जो अमरीकी सफारतखाने में हुआ था, फिर यूके, एक दफ़ा पाकिस्तानी सफारतखाने में भी हुआ है, और यह सन 2009 में हुआ है, आज से 4-5 साल पहले। और ये वाकया पाकिस्तानी हुकूमत ने बड़ी हिकमत से, बड़ी फराख दिली से हैंडल किया था। उस वक्त भी यही बसीज जो हैं और ये जो IRGC के लोग हैं, ईरानी लोग नहीं थे इसमें इन्वॉल्व, इसमें आवाम नहीं थी इसमें इन्वॉल्व, इसमें गवर्नमेंट नहीं थी इसमें, ये बसीज IRGC के जो लोग थे, ये इन्होंने घुस के, इन्होंने प्रोटेस्ट किया और घुस के जो है इन्होंने पाकिस्तानी झंडा उतारा पाकिस्तानी सफारतखाने से, और उसके बाद जो है फिर पाकिस्तान ने कुछ प्रोटेस्ट किया और हैंडल किया। इसे पब्लिकली नहीं किया हमने बड़े तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तो हमेशा मुसलमान ब्रादर मुल्कों को मिलाता है, हमने जो है इस पर खुल के बात नहीं की और हमने इसको वही मामला खत्म कर दिया। तो ये बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन करी। अब मैं थोड़ा सा आपको क्विकली रिएक्शन दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ इसके ऊपर। मैं आपको ईरानियों के जो दानश्वर ईरानी है वो क्या कह रहे हैं। ये अरश करामे जो है नौजवान ईरानी है, ये आजकल अमरीका में होते हैं, ये बड़ी जबरदस्त एक वेबसाइट चला रहे हैं जो ईरान के मसाइल पर तजिया करते हैं। अरश करामी जो है वो ईरान मुखालिफ नहीं है, मतलब ये अपोजिशन में से नहीं है, ये मतलब ईरान भी जाते रहते हैं तेहरान, ईरानी गवर्नमेंट से भी डील करते हैं, लेकिन इस वाक्य के बाद स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि अटैकिंग सऊदी एम्बेसी पे अटैक करना और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करना एम्प्लॉयज की जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस इश्यू से, एग्जीक्यूशन से, ये एब्सोल्युटली ये गलत रिस्पांस था, ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह जो है फिर आप देख रहे हैं कि ये त्रीता पारसी जो हैं, आरश करामी जो है मेरे अपने दोस्त भी हैं, इनसे मैं भी इनसे रابطे में रहता हूं। त्रीता पारसी जो है वो कहा जाता है अमेरिकी हलकों में Washington DC में कि त्रीता पारसी अमेरिकन ईरानियन है, और इनको कहा जाता है कि ये जो ईरान की जो एक लॉबी है Washington DC में, बड़ा ईरान भी बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है अमेरिका के अंदर, जैसे सब कर रहे हैं, पाकिस्तान भी कर रहा है, इंडिया कर रहा है, सारे मुल्क कर रहे हैं, तो ईरान भी कर रहा है, तो जो ये उसकी नुमाइंदगी करते हैं, ईरान के मसाइल को देखते हैं वहां पर वाशिंगटन में। त्रीता पारसी ने भी ये ट्वीट किया और आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि the wrong response to the wrong act, वो कह रहे हैं कि ये जो सऊदीया में है वो ये गलत है, ये उनकी राय है, वो कह रहे हैं कि गलत है, मेरे ख्याल में गलत नहीं है, सऊदीया ने जो अपने उनके शहरी हैं उन्होंने बिल्कुल सही किया है। त्रीता पारसी कह रहे हैं कि ये गलत है सऊदीया में हुआ है, लेकिन जो ईरान में हुआ है वो गलत रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए था इस तरीके से ये। और त्रीता पारसी और अरश करामी जो है ये दोनों बड़े मोतबर लोग हैं। एक और मैं आपको रिएक्शन दिखाना चाह रहा हूं, ये समी दमावंद जो है ये बेसिकली जो शाह ईरान थे उनकी पार्टी के लोग हैं, ये अमेरिका में मुकीम है, और ये ट्वीट पे बड़ी जबरदस्त डिस्कशन ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उनकी हुई है, और इस पे बेसिकली ये कह रहे थे कि ये बेसिकली उनका भी यही कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, ये उसी तरह ही गलत है जो हुआ सऊदी एम्बेसी के साथ, उसी तरह ही गलत है। अगर आप इसको कहते हैं कि ये गलत है तो ये उसी तरह ही है। मतलब ईरानियों, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ईरानियों की आपस में डिस्कशन, जो पढ़े लिखे जो दानश्वर ईरानी है वो भी इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है इसके ऊपर कि ये गलत है ये चीज़ जो हो रही है। फिर अरब लीग ने जो है बड़ी एक खुल के जो कंडेमनेशन की है वो भी आपके सामने है, वो कह रहे हैं कि ईरानी हुकूमत को अरब मुल्कों के मसाइल में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये सारी चीज़ें हो रही है, मैं आपको कंक्लूजन की तरफ लेकर जा रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तान में। बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बहुत क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जो कल तेहरान में और मशहद में हुआ है, एक मुस्लिम मुल्क के अंदर एक दूसरे बरदर मुस्लिम मुल्क की एम्बेसी पर दावा डालना ये गलत है। इसे हमें खुल के कहना चाहिए, हमें इसे कंडेम करना चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। और ईरान को चाहिए कि इस तरह के एलिमेंट्स जो गवर्नमेंट, जो उनकी गवर्नमेंट में नहीं है लेकिन उनके स्टेट का हिस्सा है, IRGC या जो भी बसीज है, ये इनको कंट्रोल किया जाए। ये गलत है, ये इस तरह से मुसलमानों के अंदर डिविजन्स फैल रही हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरब का हक है कि वो एग्जीक्यूट करे, हम जो एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में कर रहे हैं और तमाम बैकग्राउंड के लोगों की कर रहे हैं ये हमारा हक है, इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी की मुदाखलत। सऊदी भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, ईरान में बेतहाशा वहां पे एग्जीक्यूशंस हो रहे हैं तो उधर भी हो रही हैं, तो इस पर हमें ये टैबू नहीं है। हमारे ताल्लुकात ईरान से बहुत अच्छे हैं। एक बड़ी अहम बात जो पाकिस्तान कर सकता है, जो हमें करना चाहिए, जो हम सऊदीया से भी कर रहे हैं, जनरल राहील शरीफ जो है पिछले साल सऊदीया गए थे और उन्होंने सऊदीया में ये बात की है कि वहां पर जो कुछ ग्रुप्स हैं सलफी, जिसे हम यहाँ पाकिस्तान में वहाबी कहते हैं, जो यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं मदारिस को, उनको रोका जाए। सऊदी में बात हुई, हम ये बात हमें ईरान में भी करनी चाहिए कि ईरान जो है वो ये सेक्टेरियनाइज ना करे। देखें इस एक साल के अंदर अंदर एक अनफॉर्चुनेट वाकया होता है हज के दौरान, उसे सेक्टेरियन रंग दे दिया गया। ये वाकया हुआ जो कि दाखिली अंदरूनी मामला, उसको भी सेक्टेरियन रंग दे दिया गया। ये चीज़ें ईरान ख़त्म करे इस चीज़ को, क्योंकि इससे तफरीका हो रहा है, इससे जो है डिवीजन हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली जो एक्सट्रीमिस्ट हैं दोनों तरफ में, वो चाहते हैं कि ये चीज़ें हो और दूसरे लोग भी चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमें, हम अपना एक बड़ा खुल के एक किरदार अदा कर सकते हैं कि ये सियास पॉलिटिक्स में सेक्टेरियनिज्म ना लाया जाए। हमें कंडेम करना चाहिए, जो ज़ाहिर है सफारती जो अकदार या वैल्यूज़ हैं, जो कन्वेंशन हैं, उनकी खिलाफ वर्जी है जो कल ईरान में हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है एक दफ़ा 2009 के अंदर। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको हम पीछे रखें। मुसलमान ममालिक एक दूसरे के अंदर मुदाखलत ना करें, ये हमें खुल के बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो इसकी आंख जो है वो हमारे अंदर भी लग रही है, क्योंकि सऊदीया भी पैसे मदरसों को भेजता रहा है और ईरान भी भेज रहा है, ईरान भी यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। और यही IRGC और जो बसीज का मैंने नाम लिया आपको, ये हमारे पाकिस्तानी नौजवानों को मिसलीड करके, मिसगाइड करके अपनी जंग लड़ने के लिए भेज रहे हैं शाम में और इराक में और दूसरी जगहों पर। और आखिर में जो है मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहा हूं कि, और ये मैं डिस्कस कर रहा था अपने ईरानी दोस्तों से, कि अगर आप एतराज करते हैं कि सऊदी हुकूमत ने अपने एक सऊदी शहरी, जो कि इत्तेफाक से वो सऊदी शिया है, 47 में से सारे जो हैं वो सुन्नी मुसलमान थे, चार जो थे वो जिनका ताल्लुक बैरूनी कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से, हिजबुल्ला से बेसिकली, और उन्होंने, और वो पाए मुलवस पाए गए हैं, अलखबर धमाका हुआ था एक बहुत बड़ा सऊदी अरब के अंदर, उसमें वो इन्वॉल्व पाए गए हैं उसके अंदर, तो उन्होंने किया है, तो आपको इतराज है कि नहीं कि वो आलम दीन था, हालांकि वो आलम दीन नहीं थे बेसिकली, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आलम दीन था, तो ईरान ने खुद क्या किया था आयतुल्ला मुंतजरी के साथ, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आयतुल्ला मुंतजरी बड़े मोतबर आलम फिक्ह जाफरिया के, मोतबर आलम दीन, उनकी किताबें जो हैं शिया उलमा सुन्नी उलमा भी पढ़ते थे, बल्कि मुझे पता है कि उनकी किताबें जो हैं अजहर शरीफ के अंदर मिस्र में भी पढ़ाई गई हैं आयतुल्ला मुंतजरी की। आयतुल्ला मुंतजरी को पुलिस कस्टडी के अंदर 2009 में, एक तो उनको 20-25 साल से जेल में रखा गया, फिर 2009 में पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करते हुए, जो उनके अहले खाना है वो कहते हैं कि टॉर्चर करते हुए उनको कत्ल कर मारे गए थे वो, और बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी 2009 के अंदर जब वो आयतुल्ला मुंतजरी जो है वो शहीद हो गए थे या कत्ल हो गए थे, तो उस पर, तो ईरान में भी आपने भी किया था, यानी आप सऊदीया पे उनके अपने शहरी पे वो कर रहे हैं, यानी आप ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप किसी के मुल्क में मुदाखलत करेंगे 100 चीजें आपके बारे में भी उठाई जा सकती हैं। ये हमें पाकिस्तान में खुल के इन चीजों पे बात करनी चाहिए। मैंने आपको इससे पहले बताया था इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी है कि खुद ईरान के अंदर सुन्नी एक्टिविस्ट हुए हैं एग्जीक्यूट, किसी ने उस पर एतराज नहीं किया। ये बहुत सारी पॉइंट्स इस तरह की जो उठाई जाती हैं, जो उठ सकती हैं, नहीं उठनी चाहिए, इसे हमें खत्म करना चाहिए। हम यूनिक पोजीशन में है पाकिस्तान में, हम सऊदीया से भी बात कर सकते हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं। ईरान पे जब बात करने की बात आती है, बहुत से लोग वो जाते हैं कि नहीं यार ये टैबू है, ईरान पे नहीं बात करते। मेरे ख्याल में बात करना चाहिए, क्योंकि आग जो है हमें हमारे बॉर्डर तक आ चुकी है और लग रही है, और इस पर हम जरा बात करते हैं आगे चल के अगले सेगमेंट के अंदर। आप मेरे साथ रहें, वक्त के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एट क्यू। एक व्यू पॉइंट है पाकिस्तान में जो कहती है कि मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है उससे हम बिल्कुल दूर रहें, उस पर कॉमेंट ना करें, हम उसमें इन्वॉल्व ना हों। लेकिन फैक्ट ये है, ये हमारा वेस्टर्न नेबरहुड है और जो वहां हो रहा है वो हमारे, हम उससे बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। हमें इस पर बोलना चाहिए और हमारा मौकिफ बैलेंस्ड लेकिन मौकिफ स्ट्रॉन्ग वाजे होना चाहिए। जाना चक्री साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, जिनकी बड़ी नजर है आपकी अफगानिस्तान के ऊपर भी और मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स के ऊपर भी। ये जो हो रहा है इस वक्त, पहले आप बताएं आपका टेक क्या है इसके ऊपर।
मेरे ख्याल में जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, दो अहम ममालिक ईरान और सऊदी अरब की जियो पॉलिटिक्स, उनकी एक फॉरेन पॉलिसी है, जिसका मतलब यह है कि उन्होंने, दोनों ने कोशिश करना है कि इस पूरे खत्ते में रीजनल एक पावर के तौर पे इमर्ज हो। ईरान का की कोशिश है कि वो रीजनल पावर बने, सऊदी अरब की कोशिश ये कि वो रीजनल पावर बने, और इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेक्टेरियन बेस्ड है, यानी ये सेक्टेरियनिज्म के जरिए अपना पावर प्रोजेक्ट करते हैं पूरे मशरक वस्ता में। इसमें अगर आप ग्रेटर मिडल ईस्ट की बात करते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, अफगानिस्तान भी आ जाता है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और यहां पे ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग हैं जहां दोनों ममालिक के साथ उनके करीबी ताल्लुकात हैं। फिर मिडल ईस्ट में आपने देखा, जब शाम में ये झगड़ा शुरू हुआ, पाकिस्तानी यहां से गए बशार अल असद के हुकूमत के दिफा में लड़े, उनकी लाशें आई है पाकिस्तान में, ईरान में आई है। इसी तरह दाइश की सपोर्ट
ज्यादातर वो दफन ईरान में हुई है,
ईरान में हुई है, और इधर खुर्म एजेंसी फाटा में वहां पर भी उनकी लाशें भेजी गई हैं। रास्ता अफगानिस्तान, ईरान और हवाई इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हमने यह भी देखा है, दाइश की सपोर्ट में भी लोग यहां से निकले हैं। तो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, हम पे उसका बड़ा
रास्ता। इस पे से बताया ना जगदीश साहब कि ये जो रिएक्शन है इस वक्त ईरान का, मेरी राय में ये रिएक्शन इसमें एग्जेजरेशन है, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो 47 दहशतगर्द सऊदी हैं, सऊदी शहरी हैं, उसमें कोई अहम शख्सियत नहीं है, तंजीमों से सबका ताल्लुक है, और एक मुल्क के अंदर दहशतगर्द साबित जिनके ऊपर हुई है वो दूसरे कोई भी मुल्क हो, वो इंटरफियर क्यों करे।
देखिए, जो ह्यूमन राइट्स का एक टूल है, इंसानी हकूक के नाम पे सऊदी अरब, ईरान ने ये मौकफ लिया है कि सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है या जो वाकयात हुए हैं, जिन लोगों को सजाए मौत दी गई है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन एक ऐसा टूल है जो खुद ईरान के खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ है। पिछले एक साल में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा वहां पर हुई है और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। इसी तरह मगरब ने भी मुसलमान ममालिक के खिलाफ ये टूल इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है, जब इराक पर हमला हो रहा था, वहां पे डिक्टेटरशिप सदाम हुसैन के खिलाफ उन्होंने बात की कि वहां पे लोगों को आजादी दिलानी है। शाम में भी ये आज यही कह रहा है, मगरब में यही हो रहा है कि वहां पे इंसानी हकों की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो ये एक ऐसा टूल है। फिर कल लोग यहां पे भी कहेंगे कि जी, आप जिन दहशतगर्दों के खिलाफ, एपीएस पिशावर के जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ आप कार्रवाई ना करें, यह ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी है। फिर बलूचिस्तान में जो सेपरेटिस्ट है, जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स। तो हम इसको एज ए टूल के तौर पर हमें समझना चाहिए। लिहाजा इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि आप एक मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को इसको बुनियाद बना के दूसरे मुल्क की अंदरूनी पॉलिसी में मुदाखलत कर रहे हैं।
अब अच्छा, एक यहां पे बड़ी अहम पॉइंट ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वेस्टर्न ममालिक जो हैं, मगरबी ममालिक जो हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे इलाके के, हमारे यानी रीजन में एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सेक्टेरियनिज्म। लेकिन यहाँ पे जो अनफॉर्चुनेट चीज़ हो रही है वो ये है कि यहाँ पे बाहर तो दूर की बात है, ये तो हम खुद मुसलमान आपस में कर रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के मुल्क। अब ये जो कल तेहरान में और मशहद में हुआ है सऊदी कौंसुलेट के ऊपर और सऊदी एम्बेसी के ऊपर, इस पे क्या मौकफ इख्तियार करना चाहिए।
मेरे ख्याल में हमें जो है उस हद तक नहीं जाना चाहिए जो रिएक्शन हम देख रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जो एक टेंशन की फ़िज़ा बनी है, अगर हम कुछ कर सकते हैं टेंशन हमें कम करना चाहिए, लेकिन हम खुद विक्टिम हैं इस टेंशन के। आपको मालूम है कि खुद ईरान के पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स पर बड़ा असर है, जो यहाँ पर अब इत्तेजाज कर रहे हैं, उन्होंने योम सयाह मनाया हुआ। एक वाक़िया सऊदी अरब में होता है, फिर हमने ये भी देखा है माजी में, सऊदी अरब और ईरान दोनों के हमारे जो मदारस हैं उनके लिए फंडिंग सबके सामने है, उनके टेलीविजन हैं यहाँ पे, था कि माशी लिहाज से कुछ लोगों को ये पैसे देते आ रहे हैं, जिसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल के कुछ मेंबरा का भी जिक्र भी इसमें आया है। तो इस लेवल पे हमारा मुल्क में एक प्रॉक्सी जंग के लिए जो माशी असबाब है,
तो वो जमा हुए हैं। हिजबुल्ला पाकिस्तान भी बन गया है, उनका फेसबुक पेज है, बाकायदा वो रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब वो भी चीज जो पहले नहीं थी, ये एक नई चीज शुरू हुई।
असल में पाकिस्तान जो मिडल ईस्ट में जो झगड़ा है उसका भी एक अमा जगह है, ये एक एक जमीन बन एक सरजमीन बन चुकी है। एपीएस पिशावर अटैक के बाद होना यह चाहिए था कि नेशनल एक्शन प्लान को हम अमली करते, हम बॉर्डर कंट्रोल्स को जो है मजबूत बनाते ताकि लोग शाम ना जा सके, लोग अफगानिस्तान ना जा सके, लोग इराक ना जा सके, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हम वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। इसी तरह यहां पर जो तंजीमें जो ग्रुप्स जो वायलेंट हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं चाहे एक फिरके के हैं या दूसरे फिरके के हैं उनके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए वो अभी तक नहीं हो रही, जिसके नतीजे में आज हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ होता है उसके ट्रिमर्स या उसके झटके पाकिस्तान में महसूस होते हैं।
तो अजय जी साहब इसका तो मतलब ये है कि फिर हमें खुल के बात करनी चाहिए। देखिए अब मैं एक मेरी एक व्यू पॉइंट है यहाँ पे कि मैं आपसे एंड आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी के साथ भी और हमारे अच्छे ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, इश्यूज होते रहते हैं लेकिन कम्युनिकेशन हमारी बहुत अच्छी है ईरान के साथ। सऊदी के साथ भी हमारे इश्यूज हुए हैं जैसे येमेन पे हम उनको हेल्प नहीं कर सके लेकिन कम्युनिकेशन हमारी है ईरान के साथ भी है। क्या हमें ये कहना नहीं चाहिए कि सेक्टेरियनिज्म को हम ये ईरान से भी कह सकते हैं, हम सऊदियों से भी कह सकते हैं, ईरान से भी कह सकते हैं कि ये सेक्टेरियनिज्म अपनी पॉलिसी से निकालें क्योंकि हम मुतासर हो रहे हैं इससे और हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट जो है पाकिस्तानी नौजवानों की बंद की जाए। ये मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बहुत टैबू सब्जेक्ट बना हुआ है। यानी मिसाल के तौर पर अभी जैसे ये एक मुल्क है सऊदी है उस अपने 50 सिटीजन्स को एग्जीक्यूट करता है। मेरे ख्याल में हमें अपने ईरानी दोस्तों को ही बताना चाहिए कि आपको इस पर नहीं क्या जरूरत थी बोलने की, एक उनका अपना वो है उसके अंदर वो कर रहे हैं, आप उस पर क्यों बोल रहे हैं? इससे सेक्टेरियनिज्म बढ़ रही है, इससे आप मौका दे रहे हैं बाहर तीसरे ममालिक को मगरबी ममालिक को क्यों, और वो कर रहे हैं वो बड़ा खुशी आप देखें सीएनएन की कवरेज बीबीसी की। तो ये रोल डायरेक्ट हमें मेरे ख्याल में अब बोलना चाहिए हमें, ये टैबू उसको हम ना बनाएं।
मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, एक दोस्त मुल्क के हिसाब से हमें फ्रेंक डिस्कशन करना चाहिए लेकिन ये उनका हक है जो पॉलिसी वो अडॉप्ट करना चाहते हैं ना वो हमें डिक्टेट कर सकते हैं ना हम उन्हें डिक्टेट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो इश्यूज है हमें फ्लैग करना चाहिए। मसलन आज भी हम देख रहे हैं पाकिस्तान ने बड़ी प्राख्तीली का सबूत हर वक्त दिया है, इंडिया के साथ ईरान के बहुत क्लोज ताल्लुकात है, अफगानिस्तान के मगरब में शाहबहार बंदर के एयरपोर्ट के लिए एक कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोड प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो एक काउंटर बैलेंस है गवादर के लिए, हमने इसको कभी माइंड नहीं किया। इसी तरह जो है आपको मालूम एक प्रॉक्सी वॉर बलूचिस्तान में हो रही है जिसमें ईरान की फुटप्रिंट्स सबके सामने वाजे हैं और इसके सबूत भी हमारे सामने आए हैं, फिर भी हमने जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको चैलेंज नहीं किया है। तीसरा अहम बात यह कि उनके जो एक तासुर है कि ये पाकिस्तान में उनके सियासी ताल्लुकात से बढ़ के माशी भी लिंक्स हैं बहुत से ग्रुपों के साथ, इस पर भी हमने एहतजाज नहीं किया है। और इससे जो फंडिंग का इश्यू है ऐसे मदारिस जो सीरियसली फिरका वारियत में मुलविस हैं उनके खिलाफ भी हमने ईरान के साथ ये बातें नहीं उठाई हैं। तो मेरे ख्याल में जहां हम सऊदी अरब के साथ हमें ये बातें हमने की हैं और करनी चाहिए, इसी तरह
राहिल साथ राहिल शरीफ ने सऊदी में उठाई थी ये पिछले साल।
ये बिल्कुल ये अब वक्त आ गया है। नेशनल एक्शन प्लान का मतलब ये है कि हमारी जो अंदरूनी हमने जो मुश्किल है उस पर भी काबू पाना है, लेकिन जो हमारी फॉरन पॉलिसी के हवाले से इशूज हैं हमारे अवसाय ममालिक के साथ वो भी हमने करना है। सिर्फ ये कि जी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं और यहाँ पे बहुत सी कम्युनिटीज हैं हमारे रिलीजियस हैं उन पे कोई असर पड़ेगा, मेरे ख्याल में हम जो पाकिस्तानी हैं हमें समझना चाहिए कि अगर दूसरों की जंग में हम शामिल होंगे ये हमारे कौमी मुफाद में नहीं है।
हम अजय साहब खुल के ही कह देना कि पाकिस्तानी जो मुसलमान हैं सुन्नी हो या शिया हो ना सऊदीया हमें रिप्रेजेंट करता है ना ईरान हमें रिप्रेजेंट करता है, ये तो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट के मफादात के जामिन और डिफाइन करने वाले हमें खुद होना चाहिए, हम इनके पीछे दो के नहीं जाएं। ये किसी और की भी
बिल्कुल मैं एब्सोल्युटली और ये भी है, एक तो ये कि हमें डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बातें उठानी चाहिए, फिर दूसरी बात ये जो मैंने इशारा किया कि जब यहां पे नेशनल एक्शन प्लान अमली होगा तो हमारे बॉर्डर्स कंट्रोल में आएंगे, जो लोग बाहर जाएंगे उन्हें सजा मिलेगी, इसी तरह लोग डिस्करेज होंगे और इनके जो फॉरन लिंक्स हैं वो कंट्रोल होंगे। अगर हमने ये प्रॉक्सी जंग को पाकिस्तान में शिकस्त नहीं दी तो ये जो 88 का जो हमने दहाई देखा था वो वापस पाकिस्तान में आएगा और खुदा ना खासा जो फॉल्ट लाइन है सेक्टेरियन वो जो गैप है वो एक खलीज के तौर पे हमारे सामने आएगा और काबू करना मुश्किल हो जाएगा।
अजय जी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, एक्सेलेंट पॉइंट्स हैं सारे ये। अगला सेगमेंट जो है बड़ी इंटरेस्टिंग, दो तीन चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप से मैं मुलाकात भी कर सकता हूं अगर आप इस्लामाबाद में है परसों, कैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है उसके बारे में बताता हूं, वक्फे के बाद मिलते। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एट क्यू। परसों मंगल के दिन यानी कि मंगल को 66th एनिवर्सरी है उस पहले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन की जो कश्मीर पे प्लेबिसाइट और हक खुद इरादियत के हवाले से पहली दफा पास हुआ था, और इस पे पाकिस्तान के मोतबर سینئر ڈپلومیٹ ضمیر اکرم صاحب جو کہ یو این میں ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے, ان کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا بہترین موقع ہے. میں وہاں پہ ہوں گا, کچھ میرے کولیگز ہیں, کچھ میڈیا کے لوگ ہیں, کچھ اینکرز ہیں, کچھ اور ایکٹیوسٹ ہیں, کچھ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, ہم سب وہاں پہ ہوں گے. بڑی زبردست ڈسکشن ہم نے کرنی ہے. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایونٹ کا, یہ میرے پیج پہ ہمارے ایٹ کیو کے اس وقت جو ہے وہ لگ چکا ہے. آپ اس پہ رجسٹر کریں, اور اگر آپ اسلام آباد میں ضرور آئیں, میں بھی وہاں پہ ہوں گا. ہم ڈسکس کرتے ہیں, یہ جو ہے بڑی اہم اوکیشن ہے, تو اس پہ بات کریں گے وہاں پہ. اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں, بڑی زبردست ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے نیپال کے حوالے سے. آپ کو شاید یہ خبر انفارچونیٹلی ہمارے میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوئی. یو کے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ پہلی جنوری سے, فرسٹ جنوری سے, یعنی کہ تین دو دن گزر گئے اس بات کو, تین دن, فرسٹ جنوری سے تمام امداد جو بھارت کو ملتی تھی, اور آپ یہ بھی حیران ہوں گے سن کے کہ بھارت کو ابھی تک یو کے سے امداد مل رہی تھی سالانہ, وہ امداد بند کر دی گئی ہے. کیوں بند کر دی گئی؟ کیونکہ بھارت نے چار مہینے سے بلاکیٹ کیا ہوا ہے نیپال کا. یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ٹرینڈ چل رہا ہے بڑا زبردست ہے کہ یو کے کمز ٹو نیپال ریسکیو. نیپال پر بھارت نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے, دودھ نہیں پہنچ رہا, کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچ رہی. اور پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ پاکستانی حکومت جو ہے تھوڑا سا شیر دل بنے, شیر کا آپ نے لوگوں تو الیکشن لیا ہوا ہے نون لیگ نے, تھوڑا سا اس میں بھی تھوڑا سا دکھائیں, اور آپ جہاز بھیجیں تیارے, اور یہ امدادی سامان پہنچائیں نیپال. یو کے نے سٹینڈ لیا ہے کہ چار مہینے سے جو ہے بلاکیٹ ہوا ہوا ہے نیپال کا, انڈیا نے کیا ہوا ہے کیونکہ انڈیا کے سیاسی اختلافات ہیں نیپال سے, تو یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ لینڈ لاک کنٹری ہے نیپال. اور اس پہ آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, بڑی زبردست ٹویٹر پہ چیزیں آئی ہیں. سب سے اہم جو چیز جو میرے کام کی ہے وہ یہ ہے جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اجیت دوال صاحب کی تصویر ہے. انڈیا از دا ورلڈز لارجسٹ ٹیررزم سپلائر دیٹ از جنرسلی فنڈنگ آئسس افغانستان کے اندر, ہاربرنگ ٹیررسٹس ان نیپال, جو نیپال میں کام کر رہے ہیں دہشت گرد, چائنا میں کر رہے ہیں, ویتنام میں, بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان, ایران, اور سٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کر رہا ہے انڈیا کشمیر کے اندر. تو یو کے گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو نیپال کے ساتھ جو پالیسی اختیار کی ہوئی ہے بھارت نے, اس کے مد نظر جو ہے یکم جنوری سے جو ہے تمام جو یو کے کی امداد جاتی تھی اور جا رہی تھی ابھی تک 2015 تک, وہ بند کر دی گئی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے ایک بڑی اہم چیز جو آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آخری پوائنٹ ہے, وہ سی پیک کے حوالے سے ہے. پٹھان کوٹ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ایئر بیس پہ ان کے حملہ ہوا, 40 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ابھی تک جو ہے وہ اس کو کلیئر نہیں کر سکے پٹھان کوٹ کو. بڑی سوالات اٹھ رہے ہیں پرفارمنس پہ انڈین آرمی کے. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ختم کر دیا ہے, کبھی کہتے ہیں چار ہیں, کبھی کہتے ہیں چھ ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم نے پانچ مار دیے ہیں, اب ہم نے چھ مار دیے ہیں, چھ نہیں مارے, پانچ مارے ہیں, ایک بچ گیا ہے, نہیں ایک تھا نہیں, پانچ تھے وہ, چھ ہیں ہی نہیں. اور بڑا کنفیوژن جاری ہے انڈیا کے اندر اس حوالے سے. لیکن ایک چیز ابھی تک انڈیا جس چیز پہ بات نہیں کر رہا جو بہت اہم ہے, جس پہ صرف میں نے بات کیا تھا کل, اور وہ یہ ہے کہ اس اٹیک سے مسئلہ پنجاب جو ہے وہ اجاگر ہو گیا ہے. کیونکہ پنجاب میں اکتوبر سے جب سے وہاں پہ توہین کیے انہوں نے ہمارے سکھ بھائیوں کی مقدس کتاب کی, وہاں پہ انڈین پولیس کے اوپر, انڈین رینجرز پہ اٹیک حملے ہو رہے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی اٹیک کا بھی اس پہ لنک ہو. وقت میرے پاس بالکل ختم ہے. کشمیر والی آپ لنک ضرور فیس بک پیج پہ ہمارے چیک کریے گا. اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, اس وقت تک لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.